ओम नमस्ते जी। 198वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर लेखक श्री आदित्य मुनि जी वानप्रस्थ 8वां अध्याय दिवाकर की विस्तृत गगन कार्यक्षेत्र में तपन 1877 ईस्वी। हम आगे का विवरण सुना रहे हैं। प्रसंग है मिस्टर टानी प्रिंसिपल प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता। मिस्टर टानी ऋग्वेद के पहले मंत्र में अग्नि शब्द का अनुवाद आग करते हैं, परंतु उन्हें उनकी पूर्व स्थिरीकृत सम्मति भ्रम में डालती है कि आग भी उपासना की वस्तु है। अग्नि तत्व की उपासना कभी किसी ऋषि ने नहीं की। अग्नि शब्द प्राकृतिक अग्नि के अर्थों में केवल उन्हीं मंत्रों में आता है जिसमें सांसारिक व्यवहार का वर्णन है, परंतु अन्य मंत्रों में जिनमें प्रार्थना उपासना का वर्णन है, यह ईश्वर का एक नाम है और यह मेरी गढ़ंत या कल्पना नहीं है। प्रत्युत इसके दोनों अर्थ ब्राह्मणों और निरुक्त में स्पष्टतया प्रकट हैं। अंत में मिस्टर टानी ने यह सम्मति दी है कि मेरा वेद भाष्य सायण और अंग्रेजी के भाष्यों का खंडन करता है, इसके कारण मुझ पर कोई दोष नहीं आ सकता। यदि सायण ने भूल की है और अंग्रेजी अनुवादकर्ताओं ने उसे अपना मार्ग प्रदर्शक बनाना अच्छा समझा है, तो यह भ्रांति अधिक समय तक नहीं रह सकती, केवल सच्चाई ही ठहर सकती है और झूठ उन्नतिशील सभ्यता की कसौटी पर अवश्य गिरेगा। शीर्षक है पंडित गुरु प्रसाद, हेड पंडित, ओरिएंटल कॉलेज, लाहौर। पंडित जी कहते हैं कि छापने वाले ने वही छाप दिया जो उसे दिया गया। यह लिखना ऐसा ही है कि छापे वाले की भूल भी मेरी ही भूल है। मुझ पर यह दोष लगाया जाता है कि मैं अपना एक मत गढ़ता हूँ। मुझे शोक है कि इस बात से उनकी वेदों से अनभिज्ञता ही प्रकट होती है। यदि उन्होंने प्राचीन भाष्य पढ़े होते तो वे उन उक्तियों के होते हुए जो पहले दी गई हैं ऐसा कभी न कहते। मुझ पर यह दोष लगाया जाता है कि मैंने वृत्र इंद्र त्वष्टा के अपने अर्थ लगाए हैं। इस आक्षेप के उत्तर में मैं उनका ध्यान वेद भाष्य के विज्ञापन की ओर दिलाता हूँ, जिसमें इन शब्दों की विस्तृत व्याख्या की गई है और जिसकी एक प्रति साथ में नथी है। यह केवल उनकी प्राचीन संस्कृत की अनभिज्ञता का परिणाम है। पाद टिप्पणी है, यह विज्ञापन ऋषि दयानंद के पत्र व्यवहार ग्रंथ पृष्ठ 39 से लेके 47 तक छपा है। वे मेरी व्याकरण की अशुद्धि निकालते हैं। मुझ पर परस्मय पद के स्थान पर आत्मने पद के प्रयोग का दोष लगाते हैं, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए कि वह व्याकरण की बातों में अत्यंत भूल में हैं। मैंने कैयट, नागेश, रामाश्रम आचार्य, अनुभूति स्वरूप आचार्य के चार वाक्य खंड दिए हैं जो मेरे वेदमधीमही के प्रयोग का ठीक होना प्रकट करते हैं। वेदामहे के प्रयोग के लिए पाणिनि के अष्टाध्याय के प्रथम अध्याय के तीसरे पाद के 47वें सूत्र का प्रमाण दिया गया है। भाषणोपसंभाषा ज्ञान यत्न विमत्युपमंत्रणेषु वदः 1347। जो लक्षण छंदों का मैंने लिखा है इस पर भी आक्षेप है। ये सब आक्षेप उनके हास्यजनक हैं। यदि मैं अपने कथन के लिए प्रमाण दूं तो यह छोटा सा खर्रा भर जाएगा। मैं पिंगल के सूत्रों से केवल एक उपयुक्त प्रमाण देने पर ही संतोष करूंगा और उसके भाष्यकर्ता भट्ट हलायुद्ध से एक उदाहरण दूंगा। पंडित ऋषिकेश, सेकंड टीचर, ओरिएंटल कॉलेज, लाहौर। ऐसा ज्ञात होता है कि पंडित ऋषिकेश ने पंडित गुरु प्रसाद का पदानुसरण किया है, जिनके आक्षेपों का उत्तर दे दिया गया है। वह उपचक्रे शब्द पर आक्षेप करते हैं। मैं इस बात को प्रकट करने के लिए कि मेरा प्रयोग ठीक है केवल पाणिनि अष्टाध्यायी प्रथम अध्याय तीसरा पाद 32वां सूत्र का प्रमाण देता हूँ, जो इस तरह है, गंधनावक्षेपण सेवन साहसिक्य प्रतियत्न प्रकतनोपयोगेषु क्रियः। शीर्षक है पंडित भगवान दास, प्रोफेसर, संस्कृत कॉलेज, लाहौर। पंडित भगवान दास किसी नई बात का उल्लेख नहीं करते और इसीलिए जो कुछ मैं पहले कह चुका हूँ उसी की ओर ध्यान आकर्षित करता हूँ। अंत में मुझे यह कहने की आज्ञा हो कि इन सारे आक्षेपों का बल मेरे वेद भाष्य के विद्यालयों में प्रचलित होने के विरुद्ध लगाया गया है, परंतु मेरे न्याय विधाता बड़ी भूल करते हैं। मेरा वेद भाष्य महाभारत से पहले के भाष्यों के प्रमाणों द्वारा यूरोपीय विद्वानों के भाष्यों के विरुद्ध अन्वेषण की प्रबल सामग्री उपस्थित करेगा, जो सत्य को प्रकट करेगा और विद्यालयों के चरित्र संबंधी स्वर को उन्नत करेगा। यतः यह ऐसा करेगा इसलिए यह सरकार की पृष्ठपोषकता का अधिकारी है। पंजाब सरकार ने स्वामी जी के निवेदन पत्र को पश्चिमोत्तर प्रदेश, बंगाल, काशी और मद्रास में सम्मति अर्थ भेज दिया था, परंतु इन सब ने भाष्य के विरुद्ध सम्मति दी, जैसा कि ऊपरी लिखित से प्रकट होता है। यतः उन्हें सायण महीधर के भाष्यों के पक्ष में दुराग्रह था, सफलता न हुई। अगला शीर्षक है आर्य समाज की ओर से पत्र। 25 अगस्त सन 1877 ईस्वी को आर्य समाज लाहौर के कतिपय सभासदों ने भी एक आवेदन पत्र पंजाब सरकार की सेवा में भेजा था। इस पर पाठ टिप्पणी है, यह आवेदन पत्र ऋषि दयानंद के पत्र व्यवहार ग्रंथ के पृष्ठ संख्या 63 से 69 तक छपा है, पाठक इसे अवश्य देखें, जिसमें यह दिखाते हुए कि किस प्रकार वेद के अभ्यास में महाभारत के पश्चात बौद्ध धर्म के प्रचार और पौराणिक शिक्षा के विस्तार तथा मुसलमानों के अत्याचार के कारण उत्तरोत्तर न्यूनता आती गई थी, और कि सायण आदि के भाष्य इसी काल की प्रसूति होने के कारण पौराणिक विचारों से पूर्ण है। निम्नलिखित कारण दयानंद वेद भाष्य की सहायता करने के लिए दर्शाए थे। पहला, यदि भारत का वाङ्मय नैसर्गिक रीति पर चले तो अवश्यमेव वेदों से आरंभ होगा, और इसीलिए वेदों का प्रचार अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, इस वेद भाष्य के प्रकाशित होने से जो खोज का भाव उत्पन्न होगा उसकी उन्नति में सहायता होगी। तीसरा, वेद विद्या का प्रसार हिंदू मस्तिष्क को मिथ्या विश्वास और अविद्वानोचित हट से मुक्त करेगा। चौथा, स्वामी दयानंद का भाष्य बड़े प्रबल प्रमाणों की भित्ति पर है, जिन प्रमाणों को यूरोपीय विद्वान भी स्वीकार करते हैं, यद्यपि वे उन्हें अभी तक काम में नहीं लाते। पांचवा, यतः स्वार्थ पर ब्राह्मणों और भ्रांतिपूर्व अभिज्ञता रखने वाले यूरोपीय विद्वानों से सम्मति, निष्पक्ष सम्मति मिलने की आशा नहीं है, इसलिए इस दशा में उक्त भाष्य को परीक्षा का अवसर मिलना चाहिए। मिलने की आशा नहीं है इसलिए इस दशा में उक्त भाष्य को परीक्षा का इस पत्र में उन्होंने यूरोपीय विद्वानों के अधूरे वैदिक ज्ञान को प्रकट करने के लिए यह भी दिखाया था। उत अब्रुवंतु नो निदो निरन्यतश्चिदारतः दधाना इंद्र इद्दुह उतनः सुभगां अरिर्वोचे युर्दस्म कृष्टयः स्यामेद इंद्रस्य शर्मणि। ऋग्वेद 1:4, 5 एवं 6 मंत्र। इन मंत्रों के 6 विद्वानों ने 6 प्रकार से भिन्न भिन्न अर्थ किए हैं। ऐसी अवस्था में किसे ठीक माना जाए? मैक्स मुलर ने अपने अनुवाद के संबंध में स्वयं लिखा है कि मेरा अनुवाद कई जगह शुद्ध करने के योग्य है। इसके विरुद्ध स्वामी दयानंद ने अपने अर्थों की वेदों, ब्राह्मणों, निरुक्त, निघंटु, अष्टाध्यायी आदि के प्रमाणों और प्रबल युक्तियों से सिद्ध किया है। दयानंद प्रकाश में स्वामी जी का पंजाब लेफ्टिनेंट गवर्नर से वेद भाष्य की सहायता के लिए मिलना और प्रार्थना करना सन 1878 ईस्वी की घटना बताई गई है, जो कि सत्य नहीं है। परंतु सरकार में कुछ सुनवाई न हुई और ऋषि भाष्य की सहायता में एक झंझी न मिली। क्या यूरोप के और क्या भारत के सभी विद्वान सायण महीधर आदि के कृतदास हैं? वे अपने और अपने गुरुओं के विरुद्ध दयानंद की बातें कैसे सुनते और सरकार को सुनने देते? फिर भारत के विद्वानों की बपौती कैसे रहती जो सायण आदि अपने असत्य भाष्यों द्वारा स्थापित कर दिए गए हैं? और यूरोपीय विद्वान की तो बिल्कुल ही किरकिरी हो जाती। जन्म जन्म का परिश्रम मिट्टी में मिल जाता, फिर उन्हें संसार को वेदों के विषय में मिथ्या बातें कहने और प्रचार करने का अवसर कैसे प्राप्त रहता? और यह भ्रम कैसे फैलाते कि प्राचीन आर्य आग, पानी, वायु, सूर्य, चंद्र की उपासना करते थे इत्यादि? विद्वानों ने दयानंद के भाष्य को तिरस्कारा सही, परंतु समय आ चुका है कि जब स्वयं उनमें से ही ऐसे लोग उत्पन्न होंगे जो दयानंद के चरणों में बैठने में अपना गौरव समझेंगे और ऋषि भाष्य के आगे नवीन कालीन सभी भाष्यों को हेय समझेंगे। शीर्षक है, तुम विवाह न करना। लाहौर की स्थिति के समय कॉलेज के कुछ विद्यार्थी स्वामी जी के पास संस्कृत पढ़ने आया करते थे। उनमें एक नवयुवक गणपति राय भी था। उससे स्वामी जी ने कहा था कि तुम विवाह न करना, क्योंकि तुम्हारी आयु 30 वर्ष के भीतर है। उसने यह सुनकर विवाह का विचार त्याग दिया, परंतु फिर माता पिता तथा अन्य संबंधियों के आग्रह पर उसे विवाह करने पर विवश होना पड़ा, किंतु वह 28 वर्ष की आयु में ही मृत्यु का ग्रास हो गया। उसने मरण समय कहा था कि स्वामी जी ने पहले ही कह दिया था कि मेरी आयु अल्प है, इसी से मैं विवाह करना नहीं चाहता था। यह घटना स्वयं उसके भाई ताराचंद ने पंडित लेखराम से वर्णन की थी, जो उस समय मुजफ्फरपुर में पुलिस विभाग में क्लर्क थे। आज की इस चर्चा को यही विराम देते हैं। ओम।